नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, जब कभी भी पवित्रता की बात चलती है, जैसे कल भी हमारी चल रही थी, तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग बहुत ही प्रेरक लगता है। एक बार वो अमेरिका में घूम रहे थे तो किसी महिला ने, बहुत ही भद्र सी महिला थी, उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने उनसे पूछा कि आप मुझसे विवाह क्यों करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी तरह ही एक तेजस्वी संतान चाहती हूँ जो हमारा नाम रोशन करे। तो विवेकानंद जी ने बहुत ही शालीनता से कहा कि हम इतना प्रयास क्यों करें और आप ये क्यों सोचती हैं कि कोई एक ऐसी संतान हो जो बहुत ही तेजस्वी हो मेरी तरह, आप ये क्यों स्वीकार नहीं कर लेती कि मैं ही आपकी संतान हूँ। आज से आप मेरी माता हुई और मैं आपकी संतान हुआ, और आज से आप ये मान लीजिए कि आपका एक ऐसा पुत्र है जो बहुत तेजस्वी है, आपका नाम रोशन कर रहा है। मित्रों, देखिए, ये एक ऐसा प्रसंग है जो हम सबको कितना ज्यादा अवेयर करता है, कितना ज्यादा आनंदित करता है, और एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर भी गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये प्रसंग वहां भी, अमेरिका में भी, कितने सारे लोगों ने सुना होगा और लगा होगा कि सचमुच भारत कितना महान देश है जहां चरित्र का इतना ज्यादा महत्व है, पवित्रता का इतना ज्यादा महत्व है। और ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 100 साल ही तो पुरानी है लगभग, और इससे पहले यदि हम जाएं तो हमारा देश कितना महान रहा होगा, गौरवशाली रहा होगा, जहां चरित्र और पवित्रता का कितना महत्व रहा होगा। क्या हम सबको ये बीड़ा फिर से नहीं उठाना चाहिए कि जिस चरित्र के कारण, जिस पवित्रता के कारण हमारा देश सिरमौर था, वही पवित्रता फिर से हम सबके जीवन में आए, वही चरित्र फिर से हम सबके जीवन में आए, ताकि न केवल हम सुखी हों लेकिन देश का नाम भी बहुत सुंदर स्वर्णिम अक्षरों में संसार के इतिहास में लिखा जाए। हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है मित्रों। इसीलिए बहुत गहराई से जब भी इसकी चर्चा होती है तो मैं जरूर भ्राता जी से चाहता हूँ कि हम और क्या क्या ऐसा कर जाएं। आइए उसी चर्चा को जहाँ हमने कल छोड़ा था आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। भ्राता जी, ऐसा लगता है कि ये एक ऐसे अपवाद जैसे केसेस होते हैं, लेकिन फिर भी यदि 100 साल पहले भी स्वामी विवेकानंद जी ने ये किया था तो मन में जरूर आता है कि इससे पहले भी हमारे देश में ऐसे युवक रहे हैं, युवतियां रही हैं, जिन्होंने चरित्र के लिए, रानी पद्मिनी जी ने अपनी आहुति दे दी थी, तो आज के दौर में भी वही दृश्य बन जाए, कुछ ऐसा सुझाइए ना।
बिल्कुल, मुझे भी याद आ रहा था छत्रपति शिवाजी की एक घटना
जी।
उसका कोई सेनापति किसी मुगल सरदार को हरा के उसकी बेगम को पकड़ के ले आया और कहा, महाराज आपके लिए एक बहुत सुंदर सौगात लाए हैं, स्वीकार कर लो। सोचा क्या लाए होंगे, कुछ भी धनमाल लूट के लाते हैं जब युद्ध होते हैं
जी। जी,
तो डोली आगे आई और उसमें से बेगम को निकाला गया जो बहुत डरी हुई थी। शिवाजी ने उसे देखते ही कहा, मेरी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। और उसका बहुत सम्मान किया, उसका भय खत्म किया और सेनापति को कहा, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ससम्मान इसको इसके डेरे में पहुंचा के आओ। सचमुच इन बातों से हमारा इतिहास भी गौरवान्वित है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे चरित्रवान पवित्र लोग रहे हैं। हमारे राजा महाराजा भी कितने चरित्रवान और पवित्र थे, स्वामी विवेकानंद और ऐसी बहुत सारी हस्तियां रही हैं जिन्होंने पवित्रता और चरित्रता के कारण हमारे मस्तक को ऊंचा किया है। तो सचमुच ये भारत बहुत महान है। हम अपने युवकों को जो 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, ये बताना चाहते हैं, आप अपनी महान संस्कृति को भूले नहीं, दूसरों को कॉपी करते हुए वेस्टर्न कल्चर के बुरे प्रभाव में आकर अपनी महानताओं को हमारे युवकों को भूलना नहीं चाहिए, उन्हें अपने चरित्र और पवित्रता से देश का नाम रोशन करना है। और ये सत्य है कि अब ये भारत पुनः विश्व गुरु की उपाधि धारण करेगा, और विश्व गुरु केवल एटम बम बनाने से नहीं कोई हो जाता, बहुत धन संपदा इकट्ठी करने से नहीं हो जाता, वो होने जा रही है भारत में। ऐसे संसाधन हमें मिल जाएंगे, मैं कोई भविष्य वक्ता ज्योतिषी नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ कि ऐसी चीजें हमें मिल जाएंगी अगले 10 सालों में ही कि भारत धन धान से भी भरपूर हो जाएगा। लेकिन इन सब के साथ जरूरत है भारतवासियों के महान चरित्र की, उनके महान बलिदानी स्वभाव की, उनकी पवित्रता की, ताकि ये देश सचमुच चरित्र के बल से, जो सबसे बड़ी संपत्ति है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना है, पुनः सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाए और सारे देश प्यासी नजर से फिर भारत की ओर देखें, सब कुछ समर्पित कर दें कि हमारे एटम बम भी तुम ही ले लो, अपना चरित्र
उसका हम क्या करें,
अपना ये ज्ञान, मैं हंसी में ही कह रहा हूँ, अपना ये ज्ञान हमें दे दो। तो वास्तव में ऐसा हमारी नई पीढ़ी को अवश्य करना है और करेगी। हमारी नई पीढ़ी में मुझे कई लोग मिलते हैं, युवक बहुत महान, विचार बहुत शुद्ध, प्योरिटी के बीज कुट कुट कर जिनमें भरे हैं। मैं उनके माँ बाप को भी धन्यवाद देता हूँ, उनके नाम भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं कहता हूँ किसने नाम रखा है, तुम्हारा माँ ने या बाप ने, तो का पता नहीं किसने रख दिया था। तो सचमुच हमारे युवकों में ऐसी मान्यताएं हैं।
प्रताप जी, बहुत सारे युवा जो मेरे भी साथी हैं और जिनसे मुलाकात होती है अलग अलग स्थानों पे, तो सचमुच एक जो भावना आप कह रहे हैं, एक जरूर है कि हम देश के लिए कुछ करें, और एक देशभक्ति की भावना देखने में आती है कि देश के लिए कुछ करें, कुछ हट के करें, कुछ अलग करें। हाँ, एक मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि है कि हाँ क्या करें, एनर्जी बहुत है, विचार बहुत है, लेकिन क्या करें। संभवतः जो आप बात कह रहे हैं सचमुच एक दिशा उन सब जरूर मिले,
ऐसा ही आता, लेकिन केवल इससे ही नहीं काम चलेगा। अपने विचारों को महान बनाना, अपनी प्योरिटी के स्तर को ऊंचा उठाना, अपने कर्मों को बहुत डिवाइन करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है ना, मुझे एक आया किसी का, एक डॉक्टर बहन ने कहा कि भाई तुम ये बात सबको सिखाओ, तो उससे क्या है, ये प्रोफेशन बदनाम होता है। मैं तो कहता हूँ अपने सभी डॉक्टर्स को, और हमारे संपर्क में आने वाले सभी डॉक्टर्स इस बात को अपनाते हैं कि रोज 5 पेशेंट आपको फ्री देखते हैं। कोई गरीब पेशेंट आ जाए, उसका ऑपरेशन हो रहा, जिसके पास लाखों रुपए नहीं है, कम से कम में कर देना है, ताकि वो बेचारा जीवन भर कर्ज में न डूबा रहे। इससे जो कुछ प्राप्त होगा ना, गुड ब्लेसिंग्स, दुआएं और पुण्य कर्म, तो ऐसे महान विचार यदि मनुष्य अपने अंदर भर लेता है, तो देश का मस्तक ऊंचा होना ही है।
दादा जी, जिस चरित्र की या अपनी श्रेष्ठ संस्कृति की हम बात कर रहे थे कि हमारे पूर्वज इतने महान रहे हैं, देवतुल्य रहे हैं, और उनका चरित्र सचमुच आज भी गाया और पूजा जाता है, तो आज उसकी चर्चा थोड़ी सी कम है। बाकी सब चर्चा है तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए लगता है कि शायद वो जो एक प्रेरणा के हमारे स्रोत हैं, सच्चे स्रोत हैं, उन्हें सामने लाने की जरूरत है, उजागर करने की जरूरत है। आपके विचार से क्या क्या किया जाए ताकि उनकी जो छाप है हमारे युवाओं पे पड़े, और फिर से उस चरित्र, श्रेष्ठ चरित्र और महानता के पद पे पूरा देश चल पड़े।
देखिए, पहली चीज तो हमारी एजुकेशन में, हमारे सिलेबस में कुछ चीजें जोड़ने की जरूरत है। हमारी सरकारें अवश्य इस पे सोचती हैं, चिंतन करती हैं, क्योंकि वहां भी कई बुद्धिमान और समझदार लोग बैठे हैं जो देश के भविष्य के बारे में एक विजन बना के रखते हैं, और वो तभी संभव होगा जब हमारे युवक बहुत श्रेष्ठ हों। तो शुरू से ही हमारी एजुकेशन में कुछ ऐसी छोटी बातें सिखाई जानी लगे जिसका प्रभाव युवकों पर एजुकेशन के साथ पड़े। हमारी एजुकेशन में इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि स्पिरिचुअलिटी, मॉरलिटी को इस सिलेबस के साथ जोड़ा जाए, ताकि बचपन से ही बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले। नहीं तो यही हो रहा है कि कोई सिखाने वाला नहीं रहा। दूसरा, जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, उनको भी अपना जीवन आदर्श बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पंडितों के प्रति बहुत अच्छी भावना होती है, और वो भी कहीं ना कहीं लोगों को मदद करते हैं, कहीं ना कहीं कार्य जो उलझे हुए हैं उनको सरल करा देते हैं, मंत्र शक्ति से, अपनी ज्योतिषीय किसी भी विद्या से। लेकिन उनके जीवन को बहुत श्रेष्ठ देखना चाहते हैं लोग, ताकि उनका खान पान भी बहुत सुंदर हो, शाकाहारी हो, उनका बोल चाल भी बहुत अच्छा हो, वो बहुत लोभी ना हो, उन्हें केवल धन धन न दिखाई देता हो। तो दूसरी चीज ये है कि जो बड़े हैं उन्हें आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। और तीसरा, अपना परिवार और समाज
जी,
उसमें भी जब एक व्यक्ति बड़ा हो गया, मान लो 45-50 साल की आयु पार कर गया, अब उसे कुछ आदर्श प्रस्तुत करना ही चाहिए। हो क्या रहा है कि बड़ी उम्र होने पर लोग बिगड़ रहे हैं, कोई शराबी बन रहा है, किसी को क्रोध बहुत आ रहा है, कोई बिल्कुल, हम तो युवकों को कहते हैं पर बड़े लोग को मार्ग पे जा रहे हैं, तो वो युवकों को क्या प्रेरणा देंगे। और हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो इस फील्ड में बहुत बड़ा काम कर रहा है। इसलिए हम जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं मैं देखता हूं हमेशा एक टॉपिक डिक्लेयर कर दें कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल या पावर ऑफ थॉट या हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, तो युवक बहुत आते हैं। तो इसे एक लक्षण दिखाई देता है कि उनको जगाने की जरूरत है, वो जगना चाहते हैं, वो अच्छाई सीखना चाहते हैं, वो सफलता का मार्ग जानना चाहते हैं, लेकिन सिखाने वालों की कमी पड़ गई है। तो हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय, और मैं उनसे भी कहूंगा जो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो केवल पैसे को अपना केंद्र न बना ले। सबसे बड़ी बुराई ये हो गई है, कोई भी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन खोलता है उसका पहला लक्ष्य होता है कि पैसा बहुत कमाना है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये बात भी कभी कह दिया करो, लोग प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं और बस उन्हें धन के अलावा कुछ नहीं दिखता, कोई पेशेंट आया नहीं और सोचते हैं बस इसको खाली करके भेजना है। डॉक्टर ही मुझे बताते हैं स्वाइन फ्लू फैला, कहा 500 रुपए में उसका सब जो ब्लड आदि चेकअप होता है पैथोलॉजी में 500 रुपए लगते थे, प्राइवेट में 10-10 हजार कर दिए। देखिए कितनी बुरी चीज है। एक और सारा देश उस चीज के प्रति अवेयर कर रहा है लोगों को, बेचारे गरीब लोग उससे पीड़ित हो रहे हैं और एक व्यक्ति उससे धन कमा लूं, इससे बचना चाहिए, मानवता को दरकिनार नहीं कर देना चाहिए। पैसा ही सब कुछ है, हमने तो बड़ा हॉस्पिटल बनाया, इसमें करोड़ों रुपए लगाए हैं, हमें तो डॉक्टर्स की सैलरी बहुत ज्यादा ही सब है, लेकिन इसके बाद भी आपको बहुत कमाई होती है, लेकिन उसको बेतुका न कर दें। ये मानवता का त्याग होना नहीं चाहिए, तब हमारा नया जो आने वाली जो पीढ़ी है
जी,
वो बहुत कुछ सीखेगी। नहीं तो इन सब से क्या मैसेज जा रहा है। अभी एक युवक ने अगर 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में दे दिए तो उसे लगता है कि भी पैसा चाहिए, अब कैसे भी पैसा इकट्ठा करो, लूटो लोगों को पैसा इकट्ठा करो, तो एक गलत परंपरा का जन्म होता है। जैसे मैंने पीछे भी सुनाया था स्वाइन फ्लू का एक केस गया, कहा चेकअप होना है, भर्ती कराओ इसको, 10 दिन हॉस्पिटल में रख लिया और 12 बिल दे दिया हाथ में, 12 लाख और रिजल्ट नो स्वाइन फ्लू। मैंने कहा संघर्ष कर देते हैं लोग, वायलेंट हो जाते हैं, मारपीट पे उतर आते हैं, गोलियां मार देते हैं, बिल्कुल गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गलत तरीका, गलत परंपरा जो चारों ओर फैल रही है, इसको हमारी सरकारों को भी रोकना चाहिए और मनुष्य को स्वयं भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर संदेश।
कल भी शायद हमारी इस विषय पे चर्चा हो रही थी बेटा जी, कि राम जी कहीं बिल्कुल कोने में दुबक से गए हैं, बैठ गए हैं, और ये जो रावण महोदय हैं वो थोड़े से ज्यादा आक्रामक,
बिल्कुल राम के लिए तो जगह छोड़ी नहीं, सारा स्थान रावण को ही दे दिया है।
वही एक बार मूल बात थी बेटा जी, कि सब जानते हैं कि हमारे साथ तो कुछ जाएगा नहीं, धन भी नहीं जाएगा, हम कितनी भी मिल्कियत बना ले, हमारी अच्छाइयां ही जाएंगी, अच्छे कर्म ही जाएंगे, लेकिन ये केवल ज्ञान तक सीमित रह गया है, ये व्यवहार में कैसे आए और ये राम जी कैसे एकदम प्रखर रूप से सामने आ जाएं, इच्छा तो यही है, ये कैसे संभव हो।
सच तो ये है कि ये ज्ञान भी आज मनुष्य को नहीं रहा कि हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं, ये तो केवल शमशान में विचार आता है, न उसके पहले न उसके बाद में,
केवल वहीं
एक वहीं बस थोड़ी देर के लिए लोग आपस में कहने लगते देखो क्या लेके गया, शमशानी वैराग जिसे कहते हैं, वो जागृत हो जाता है, घर आए नहाए धोए फिर वही धंधा चालू कर देते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। हमारे साथ हमारे पुण्य कर्म जाते हैं, हमारे साथ हमारी श्रेष्ठ धारणाएं चलती हैं, पैसा साथ नहीं जाएगा ये तो सत्य है, हम जाने की बात न भी करें, जीवित रहते भी ऐसा पैसा सुख नहीं देगा, ये बिल्कुल कर्मों की गति है। और मैंने हजारों केस देखे हैं जिन्होंने गलत ढंग से पैसा कमाया और बच्चे चरित्रहीन निकल गए, बच्चे बाप से रात दिन लड़ाई करने लगे, बच्चों ने बाप का सारा धन संपदा उड़ा दिया, तब बाप परेशान कि मैंने पाप करके पैसा कमाया और ये बच्चों ने क्या कर दिया। तो कर्म की इस गति को जानते हुए
जी,
हमें अपने अंदर छुपे हुए देवत्व को, राम को जगाना ही है, इसके लिए स्पिरिचुअल मार्ग है और इसके बिना मनुष्य को सच्चा चैन कहीं मिलेगा नहीं।
बिल्कुल, चलिए हमारी भी आशा उम्मीद रहेगी और लगातार आप प्रेरित करते रहते हैं, समाधान का भी ये प्रयास रहता ही है, इस ऑफलाइन चैनल ही रहता जी ये कार्य लगातार कर रहा है, लोग वैसे प्रसन्न हो रहे हैं, देख रहे हैं परिवर्तन तो आ ही रहा है, बहुत जल्दी जैसा समाज चाहते हैं हम वैसा समाज हो जाए हम आशा करते हैं। प्रता जी, चूंकि हमारी पवित्रता पे बात चल रही है तो पवित्रता से जुड़ा हुआ एक मेल आया है। हमारी एक बहन लिखती है कि मेरी उम्र 27 वर्ष की है और 2 वर्ष से मैं विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हूँ। अब मेरी जो माँ है, मेरी माँ, उनको मानसिक रूप से थोड़ी तकलीफ रहती है शुरू से ही, और मेरे पिताजी को भी शुगर की तकलीफ है। अब मैं घर में अकेली हूँ। माता पिता ये चाहते हैं कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए और वो अपनी जिम्मेवारियों से निवृत्त हो जाए, लेकिन चूंकि अब मैं विद्यालय से जुड़ी हूँ, मुझे पवित्रता बहुत अच्छी लगती है, मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं उन्हें लाख समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं पवित्र जीवन बिताऊंगी, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और मम्मी तो कई बार मुझे धमकी भी देती है कि यदि तुमने शादी नहीं की तो मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी। तो मैं बहुत ही उहापोह की स्थिति में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, माता पिता की बात मान लेनी चाहिए या फिर मुझे पवित्र जीवन ही जीना चाहिए जो कि मेरी इच्छा है। क्या
देखिए, भगवान ने तो युवकों का खास रूप से आह्वान किया है कि मुझे इस युग परिवर्तन के कार्य में पवित्रता का सहयोग दो
जी।
अब एक ओर भगवान का आह्वान है, दूसरी ओर माता पिता की ये इच्छा। नेचुरली माता पिता चाहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, लेकिन मैं तो यहाँ सोच रहा था कि शायद वो ये कहते होंगे कि तुम शादी ना करो बेटी, हम बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी मदद करो इस अंतिम यात्रा में।
वो हमें अगर लड़का सोच रहे होंगे बेटा जी कि हमारी बात हमारी बिटिया का क्या
होगा। तो इसमें इन्हें उनको निश्चिंत कर देना चाहिए कि मैंने सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ लिया है और मैं जॉब में भी हूँ, तो मैं आपकी सेवा भी करूंगी, मुझे अपना बेटा ही मान लो और मैं बिल्कुल निश्चिंतता पूर्वक, निर्भयता पूर्वक सुरक्षित जीवन भी व्यतीत करूंगी। तो देखिए, हमारी तो राय यही है कि भगवान की बात माननी चाहिए, लेकिन अपने माँ बाप को बहुत प्यार से कन्विंस कर देना चाहिए ताकि उनका दिल न दुखे, और अपने प्यार से, अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें धीरे धीरे ज्ञान सुनाते हुए इस विचार पर ले आना चाहिए कि नहीं, पवित्र जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। शादियां तो सभी कर रहे हैं, शादी ब्रेक हो रही है, शादी हो गई और फिर वो टूट गई और फिर मैं घर में आ गई, तो इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, बदनामी भी हो गई और एक कलंक लग जाता है जीवन पर। इसलिए इनको ये अभ्यास करना चाहिए साथ साथ, रोज सवेरे उठकर 7 बार याद करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और माता पिता दोनों मेरे सहयोगी हैं, बहुत महान हैं वो दोनों भी, और मेरी इच्छा का जरूर सम्मान करेंगे, वो दोनों महान हैं, मेरे पूर्ण सहयोगी हैं। उन्हें गुड वाइब्रेशंस दे दें 10 मिनट, तो उनकी मेंटेलिटी बदल जाएगी और ये पवित्र जीवन जो ये जीना चाहती है, भगवान की आज्ञा पर, किसी मनुष्य की आज्ञा पर नहीं, किसी के कहने से नहीं, तो इसमें भी ये सफल होगी। क्योंकि आप देख लीजिए, आजकल के युवक कहाँ पवित्र बनना चाहते हैं, अगर इसमें पवित्रता के संस्कार हैं तो ये तो देवी है ना। तो इनके माँ बाप को तो गर्व करना चाहिए अपनी ऐसी संतान पर, और सबका मालिक तो ऊपर बैठा है, जिसका इसने हाथ पकड़ा है, जिसकी शरण में चली गई है, सर्वशक्तिवान, उसके होते ये सोचने की तो बात ही नहीं कि कौन इसे
होगा। लेकिन बता जी, ठीक है, वो कहते हैं कि भगवान तो है, वो सबके साथ है, मालिक है, लेकिन प्रैक्टिकल में जब नीचे आते हैं और देखते हैं कि इकलौती बिटिया है और ये दोनों अब बीमार रहने लगे हैं, तो एक नेचुरल सी चिंता होती है कि ठीक है, भगवान तो मालिक है ही, लेकिन नीचे भी तो कोई देख रेख करने वाला चाहिए। मान लो कल को ये बीमार हो जाती है, इसकी देख रेख कौन करेगा, या कोई और समस्या हो जाती है, आज वो हमसे शेयर कर लेती है लेकिन कल किसके साथ शेयर करेगी। तो ये सारी बातें बहुत प्रैक्टिकल यदि देखा जाए तो माता पिता के मन में आना लाजमी है। यहाँ क्या सजेस्ट करें?
बिल्कुल ठीक है, माँ बाप जो कुछ सोचते हैं उनका सोचना तो बिल्कुल ठीक ही है, परंतु आज हम ये भी तो देख रहे हैं, शादी होने के बाद कौन किसको संभालता है, इसको उनको संभालना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केस हो रहे हैं कि पति को भी लड़की को संभालना पड़ता है, तो सास और ससुर जो बुजुर्ग हो गए उनको भी संभालना पड़ता है। तो ये कोई एक बहुत सुंदर और इम्पोर्टेंट बात नहीं कि किसको कौन संभालेगा, अब अपनी पवित्रता को संभालने की बात है, जो समय की मांग है। और जैसे मैंने कहा, माँ बाप को अच्छे वाइब्रेशंस देकर उन्हें इन्हें खुश और संतुष्ट भी करना होगा, ताकि उनकी गुड ब्लेसिंग्स इनके साथ रहें।
बिल्कुल, मतलब ये अपने निर्णय पे थोड़े से दृढ़ रहें और उनके साथ साथ उनको कन्विंस करें।
बहुत जगह हमारे भाई बहने ऐसे हैं कोई कुमार, कोई कुमारी, कोई अकेला रहने वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में आता है तो सब लोग उसे मदद करते हैं। ये तो वैसे भी भारतीय परंपरा है, ये तो कल्चर ही है। और हमारे यहाँ तो संगठन एक परिवार बन जाता है, तो एक दूसरे के बहुत समीप भी रहते हैं और हमारी बहनें भी मदद करती हैं और करवाती भी हैं।
ये हमारे एक भाई ने भेजा है और ये कहते हैं कि मेरे पिताजी को कुछ समय से माता जी पे शक होता है किसी पड़ोसी को लेकर के। यद्यपि हम लोग 21 वर्षों से उस स्थान पे रह रहे हैं, मेरी उम्र भी 29 वर्ष हो गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि परिवार एक ऐसा स्थान है, पति पत्नी का संबंध एक ऐसा संबंध है जहां समरसता होना, प्यार होना, एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये नहीं होता तो कई बार लगता है कि जीवन बोझ सा हो गया है। इसलिए मैं जरूर आपसे प्रकाश चाहूंगा ब्रता जी, आज वक्त हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब कभी परिवार की बात आती है तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है ये जानते हुए और आपको ये बताते हुए भी कि सारे संसार को परिवार का कॉन्सेप्ट भारतवर्ष ने ही दिया है कि सारी वसुधा एक परिवार है और परिवार में कैसे रहना चाहिए और परिवार का प्रेम क्या होता है ये भी भारतवर्ष ने सारे संसार को सिखाया है। लेकिन दुख होता है जब ऐसी स्थितियां हमारे सामने परिवार में आ जाती हैं तो, और सचमुच दुर्भाग्य से ऐसी स्थितियां बनती चली जा रही हैं। और जहां कहीं चरित्र की बात आती है, पति शक करे पत्नी पे या पत्नी शक करे पति पे, तो पूरा ही जीवन स्पॉइल हो जाता है। आगे भविष्य क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये सब सोचा ही नहीं जा सकता। सब कुछ जैसे डैमेज होता चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है हम परिवार में आपस में प्रेम, आपस में विश्वास बनाए रखें और बातें यदि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी रही हैं, आपस में बैठ करके उसे ठीक किया जाए। और यदि उससे भी बातें नहीं बन रही हैं तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं ही हमारे साथ। एक आध्यात्मिक अभ्यास हमें बहुत मदद करता है अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करने में और सामने वाले की भी भावनाओं को शुद्ध करने में। हम सामने वाले के विचारों को बदल सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं, उसके बोल को बदल सकते हैं, उसके व्यवहार को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मुझे खुद सक्षम होना होगा, शक्तिशाली होना होगा, खुद अच्छे योग का अभ्यास करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है मित्रों। और जहां पवित्रता से शुरुआत हुई थी हमारी, मैं यही कहूंगा, किसी महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही है कि तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करो तो पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम अपने चरित्र की रक्षा करो तो चरित्र तुम्हारी रक्षा करेगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को हम आगे भी ब्राता जी के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन विशेष चर्चा ये जो मैं चाहता था ब्राता जी के साथ कि परिवार में सुख शांति कैसे हो, आपस में कैसे समरसता बने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस विषय को कल जरूर ब्राता जी के साथ छेड़ेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकर्मी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान। सारा ये जहान कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।